क्लास शुरू कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह
Recording in
वकफा
progress.
वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। आज माशाल्लाह हमारी क्लास में दाऊद भाई भी काफी दिनों के बाद मौजूद हैं। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे फरहान भाई, सीधे आज से शुरू करते हैं। जी
हमने बड़े तीन वाक्य पढ़े थे। पहला था जिसमें हुआ
सबसे आखिरी वाक्य बताया ना, वो पूछा
आखिरी
हुदैबिया का
था
वाकया। ठीक है, हुदैबिया में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने सफीर बना करके, अपना एम्बेसडर बना करके भेजा था इंस्टेड ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको के अमूमी तौर पर एम्बेसडर बना के भेजा जाता था, तो उनकी वजह थी जिसकी वजह से उनको नहीं भेजा गया। जी रेहान, आपके मुताबिक
लेकिन
बैते रिजवान का वाकया बताया था हुदैबिया के अंदर, विद इन हुदैबिया एक बहुत मेजर वाकया जो था बैते रिजवान का वाकया था। जी जी बिल्कुल आखिरी बात, बल्कि इससे सेकंड लास्ट बात ये थी कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ जो है वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरा एक हाथ जो है ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ है और दूसरा हाथ जो है मेरा अपना है, तो इस तरह से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत ली थी। जी मोहम्मद, आप क्या बताने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आयतें उतारी इस बैत रिजवान से, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि फरमाए यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। और फिर हमने क्या बताया था,
लेकिन
किसके अशार थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार थे कि हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि बंदे मोमिन को अल्लाह की जात के ऊपर यकीन होता है और अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन होता है कि अल्लाह ताला है, ये यकीन सिर्फ मोमिन को होता है। जी अब्दुल्ला,
300 दिए
300 ऊंट दिए थे वाकया से पहले, हमने हुदैबिया के वाकये से पहले पढ़ा था। तो बंदा मोमिन को अल्लाह की जात पे यकीन होता है कि अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ताला की कुदरत पे भी यकीन होता है और बस अल्लाह की जात पे किसी और को यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की जात के ऊपर
अभी काफी और लोग भी करते हैं, लेकिन जो उनके बाद पे यकीन करके हम ड्रावर करते हैं वो
जी, मोमिन में और काफिर में फर्क यह है कि काफिर को भी अल्लाह की जात पे यकीन होता है कि अल्लाह है। ठीक है, ईसाई को भी यकीन है कि अल्लाह है, यहूदी को भी यकीन है कि अल्लाह है, हत्ता कि हिंदुओं को भी यकीन है कि अल्लाह है। ठीक है, और अल्लाह ताला की कुदरत, कुदरत के बारे में भी अच्छा खासा यकीन होता है उनको, यहाँ अल्लाह ताला ही है। जब कुरान मजीद फरमाता है ना कि जब पूछते हैं कि भाई ये कैसे, तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह से होता है। ठीक है, लेकिन जो तफसील आती है तो उसके ऊपर फिर अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की कुदरत का इनकार करते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ ये तो अल्लाह से ही होता है। तो फर्क मोमिन में और काफिर में ये है कि मोमिन जो है वो अल्लाह ताला की आयात और अल्लाह ताला के अहकाम, जो कि एक ही चीज है, आयात और अहकाम, मोमिन को उनके ऊपर यकीन होता है। ठीक है, कि ये अल्लाह की तरफ से है और इसी को मानने में जो है वो मेरी और सबकी कामयाबी है, और इसका इनकार करने में मेरी नाकामी और सबकी नाकामी है। ये फर्क होता है मोमिन में और काफिर में। और वो आयात हम तक कैसे आई हैं, नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से पहुंचे, वो डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आई हैं, वो किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए से नहीं आई हैं, वो किसी किताब के जरिए से नहीं आई हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से पहुंची हैं। तो मोमिन को नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन होता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, जो कुछ बताते हैं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की आयात। अच्छा, तो ये पढ़ने के बाद अगली बात हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में, वो क्योंकि इस वक्त ये वाली किताब फॉलो कर रहे हैं हजरत पीर साहिबजादा सैफुल्ला नक्शबंदी राम रकात की, तो उसी की तरतीब से फिलहाल चल रहे हैं कि उस्मान गनी की बड़ी बड़ी नेकियां थी, बड़े बड़े उनके फायदे, उनके यानी फजाइल और उनके कारनामे थे। उनमें से एक कारनाम यह था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि अपनी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन से करेंगे। अली रजी और नबी अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था?
अच्छा
चचाजात भाई थे, ठीक है। तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन और अली रजी अल्लाह के दरमियान क्या रिश्ता बना शादी से पहले? दूर के चचा, हाँ दूर के चचा बोले यार, ठीक है, कजन चचा कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उसको चचा बना देते हैं, तो कजन चचा और चचा में फर्क होता है, ठीक है। जो सगा चचा होता है ना, बाप का जो सगा भाई होता है वो महरम होता है, ठीक है ना। महरम का मतलब क्या होता है? के
अगर अगर
पर्दा नहीं होता और
शादी
उससे शादी हो ही नहीं सकती, महरम से शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो महरम से शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया, तो जो कजन चचा होता है ना वो महरम नहीं होता है, ठीक है। और उससे फिर शादी भी हो सकती है और उससे फिर पर्दा भी फर्ज होता है, ठीक है। औरत के ऊपर पर्दा फर्ज होता है, और अगर वो पर्दा नहीं करेगी तो फिर वो गुनाहगार होगी, यानी पिटाई की मुस्तैद पड़ जाएगी, ठीक है। गुनाहगार का मतलब क्या है हमारी लैंग्वेज में? पिटाई की मुस्तैद, ठीक है। तो पर्दा अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। तो मोमिन और काफिर में क्या फर्क होता है? कि मोमिन अल्लाह के हुक्मों के ऊपर यकीन रखता है और काफिर अल्लाह के हुक्मों के ऊपर यकीन नहीं रखता। अल्लाह की जात का मसला कोई नहीं है, अल्लाह के हुक्मों का मसला है सारा का सारा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, पर्दा वर्दा ये नहीं होता वो नहीं होता, आंख का पर्दा होता है, जैसे आंखों के ऊपर नकाब लगा के फिर आंख का पर्दा होता है, आंखों को छुपाओ से, ठीक है। तो ये सब कुछ बेकार की बातें, अल्लाह का हुक्म मानो, नहीं मानते तो फिर मानो कि भाई मैं गलत, ठीक है, मैं नहीं हुक्म मान पा रही या मैं नहीं हुक्म मान पा रहा, ऐ अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे तौफीक अता फरमा दीजिए कि मैं आपके हुक्मों को मानने वाला बन जाऊं, ठीक है ना। ये मत कहो कि ये होता ही नहीं है, अगर होता ही नहीं है कह दोगे तो फिर तो कुफार वाला की हरकत शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, तो अली रतान की शादी का फैसला हो गया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा से। तो अब अली रतान तो ऐसे एक यूनिक, यूनिक तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अली रतान जो थे उनकी खास बात क्या थी कि ये बहुत गरीब थे, ठीक है। इनका बस एक था क्या, के हर्ब, राइट, लड़ना है, बेटा पैदा हो रहा है हर्ब, दूसरा बेटा पैदा होता है हर्ब, है हर्ब के जरिए से सारे काम करने हैं। तो अली रतान का ये जनरल कस्म के, मार्शल कस्म के था अभी तक, ठीक है। तो इनके पास माल जमा ही नहीं होता था, बस इनके माल भी क्या होता था, एक ढाल, लड़ने के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना बस वही इनके पास होता था, और कुछ नहीं। तो अब परेशान शादी के लिए, तो भाई शादी में तो फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको नान नफके का इंतजाम करना पड़ता है अपनी बीवी के लिए, तो मैं कैसे करूंगा? जो शादी के दौरान भी जो है वो आपको मेहर देना पड़ता है, खाने पीने का कुछ इंतजाम करना पड़ता है, वलीमा जो है वो दूल्हे की जिम्मेदारी होती है। कल वो वाकया सुना होगा आपने, अजहर जी ने जो डांटा था एक साहब का जो है ना निकाह पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वो पूछा कि भाई दूल्हा साहब, अजहर जी पूछते हैं निकाह पढ़ाने से पहले दूल्हा किधर बैठा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा मजमा होता है दूल्हे साहब किधर बैठे हुए, तो पूछते हैं, पता चला जी दूल्हे साहब आई नहीं तारे पकड़ने में बताया देख रहे थे दूल्हे साहब आई नहीं। तो जी ने कहा ये किस किस्म का, पहले जो है वो लोग दूल्हा लोगों का इंतजार करता था कि जल्दी से आए मेरा निकाह पढ़ाया जाए, और अब जो है वो लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। तो दूल्हा साहब जो है ना फिर उसी वक्त एंटर हो रहे थे, अजीन हूं ऐसे शख्स का तो निगाह ही नहीं पड़ाना चाहिए सही है। तो उसके ऊपर हमें घर वालों ने एक और वाकया भी सुनाया, किसी और से सुना था, एक दफा अजी जो है वो किसी का निकाह पढ़ा रहे थे, तो मेहर भी पढ़ते हैं ना कि मेहर कितना, तो वही पढ़ के बताया जाता है कि इतना मेहर मुअज्जल और इतना मेहर जो है मुअज्जल यानी फौरन दिया जाएगा, इतना मेहर जो है वो बाद में दे दिया जाएगा। तो मेहर में लिखा होता 5,000 रुपए, ये मेहर होता है, ये कौन सा मेहर है 5,000 रुपए, इसमें तो कुछ भी नहीं आता, तो ये किस किस्म का मेहर है, ठीक है। तो मेहर भी देना पड़ता है, मेहर भी जो है ना वो एक अच्छी मिकदार होनी चाहिए उस हिसाब से, जैसा कि उस जमाने का हिसाब चल रहा है। तो फिर अली अतान जो है परेशान हुए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेहर कैसे दूं। ये सब तो परेशान बैठे हुए थे कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का वहां पे गुजर हुआ। तो पूछा कि अली इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? तो मैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी को मेरे निकाह में पेश कर दिया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं शादी करने के लिए, ना मेहर के पैसे। उस्मान तरफ फरमाया, अली परेशान मत हो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरी, ठीक है ना, मैं तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम करूंगा, तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा से अली अतान की फिर शादी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन हमारे मशाइख की लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने अक्सर सुनी होगी कि आपसे फरमाया, खैरुल कुरूनी कर्नी, ठीक है, सबसे बेहतर जो जमाना है ना वो है मेरा जमाना, कर्नी, ठीक है, वो जमाना जो कि मेरा जमाना है, कर्नी माय, ठीक है, या नस्बत उसके साथ लगी हुई है, तो मेरा जमाना, फिर सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम, फिर वो जमाना जो कि मेरे जमाने से मुत्तसिल है, अटैच्ड है, यानी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद जो जनरेशन होगी जो कि उस जनरेशन से अटैच होगी वो सबसे बेहतरीन जमाना होगा, ठीक है। तो अब मेरा जमाना से नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जो ईमान वाले थे वो सब क्या कहलाते हैं? सहाबा कहलाते हैं और सहाबियात कहलाती हैं। तो जमाना अच्छा होने का मतलब ही नहीं कि सबसे अच्छी वेदर होगी इस जमाने के अंदर, सबसे अच्छी बारिश हो रही होगी, सबसे अच्छे जो है वो मौसम होगा, ठीक है ना, तो ये जमाना अच्छा जमाना नहीं, लोगों की बुनियाद पर जमाना होता है, ठीक है, लोग कैसे होंगे। तो सबसे अच्छा जमाना से मुराद कि सबसे अच्छे लोग होंगे इस जमाने के अंदर, और वो कौन है? सहाबा और सहाबियात, ठीक है। फिर यलूनहुम, तो नेक्स्ट जनरेशन जो कि मेरा जमाना तो नहीं होगा, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके होंगे, तो फिर वो किनका जमाना होगा? उन ईमान वालों का जमाना जिन्होंने सहाबा को ईमान की हालत में देखा और उनको इज्जत दी, वकार दिया, मुसलमान भी हुए और उनसे दीन सीखा, तो वो लोग फिर ताबईन कहलाते हैं। तो ताबईन का जमाना जो है वो दूसरा बेहतरीन जमाना, और फिर उसके बाद तबा ताबईन का जमाना, तो ये आपने सुना होगा यकीनन। तो अब इसमें मशायख ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम का जो ये लफ्ज इरशाद फरमाना है करनी, तो करनी जो है ना ये खिलाफत की तरतीब भी बताता है, खिलाफत की तरतीब, वो कैसे? कोई और बच्चा नहीं, कोशिश करें, अब तो खुद अपने जहन से भी बता सकते हैं अगर आपको पहले से पता नहीं, ठीक है, जो बताते रहे हैं उनके अलावा वो बताए ना, सोचें करनी, ठीक है, तो हर लेटर जो है वो एक खलीफा के नाम में मौजूद, कैसे? और नहीं, आप बताएं, सही, पहले खलीफा का नाम क्या था? पहले खलीफा का नाम ये तो अब आप, वो होता है कि जब एकदम पॉइंट आउट कर दिया जाता है ना तो फिर इंसान ब्लैक आउट हो जाता है, तो फिर वो उस वक्त में भी ऐसा होता है, तो फिर याद नहीं आ रहा, जो पहले पता भी होता है वो भी भूल जाता है इंसान, तो ठीक है, इसी वजह से पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। तो चले अब आप बता रहे हैं दुल्हन,
अभी करनी में सबसे पहले जो लफ्ज आते हैं वो खौफ है, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने, तो उनके सिद्दीक का आखिरी लफ्ज वो भी खौफ है।
सिद्दीक का काफ, और फिर
अच्छा
अब तो कोई भी बता सकता नहीं, उमर रजी अल्लाह तआला का रा, आखिरी हर्फ रा, और तीसरे उस्मान रजी अल्लाह तआला का नून, और अली रजी अल्लाह तआला का या, ठीक है, करनी, सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा, मजे की बात इसमें और भी ये है कि बाकी जो तीन साहब है ना तो उनका तो अपना जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, वो इस करनी का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का असल नाम तो सिद्दीक नहीं था, ठीक है, असल नाम तो उनका अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला ही था ना उनका नाम असल नाम, तो उनका जो लकब है सिद्दीक ये इतना डोमिनेंट है, इतना गोया के ये इनका फर्स्ट नेम बन गया, जैसे उमर और उस्मान और अली का फर्स्ट नेम, उसी तरह सिद्दीक गोया के इनका फर्स्ट नेम, असल नेम उनका यही बन गया, ठीक है, डिफाइनिंग नेम, इसमें जाती बन गया ये, ठीक है, हालांकि ये इसमें सिफाती था, सिफात जिसको कहते हैं, करनी अबू बकर उमर उस्मान अली रिजवानुल्लाहुम अजमाइन, बिल्कुल, अबू कहाफा हजरत अबू बकर, नहीं कहाफा, अबू कहाफा तो खैर उनकी कुनियत भी बनती है, और इसको तो अबू कहाफा तो उनके इब्ने अबी कहाफा, उनके वालिद का नाम था अबू कहाफा। तो अबू बकर सिद्दीक रहता जो है वो कहाफा की नस्बत से नहीं बनेंगे, वो इब्ने अबी कहाफा थे। ठीक है, अच्छा जजाकल्लाह। तो ये हो गया, तो इस तरह से खिलाफत की तरतीब भी हदीस मुबारका से एक इशारा मिलता है, इसको कहते हैं इशारा लेना। ठीक है, ये कोई नबी रसूल है कि मैं जो करनी बोल रहा हूँ उसका करनी का मतलब ये है कि काफ से पहला खलीफा होगा, रा से दूसरा खलीफा होगा, नून से तीसरा होगा, नून से चौथा, आपसे हमने ऐसा नहीं फरमाया। ठीक है, तो फिर ये इशारात होते हैं, तो कुरान और हदीस से हमें बहुत सारे इशारात मिलते हैं इस तरतीब के बारे में कि पहले ये, फिर दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये। कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं है कि पहला खलीफा ये बनेगा, दूसरा खलीफा ये बनेगा, तीसरा खलीफा चौथा, कहीं भी नहीं है इस तरीके। तो सारा का सारा इशारात का मामला है। ठीक है, साइंस या अच्छा तरतीब खिलाफत की अकली दलील हो गई। फिर अच्छा, ये तो एक जो है वो गोया कि हदीस से इशारा ले लिया, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक और अकली दलील जो कि ऐसा इशारा भी नहीं है लेकिन हाँ वाकयाती तौर पे आप उसको भी इशारा कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ये जो चार खुलफा थे इनमें से दो खलीफा जो थे, पहले दो वो सुसर थे दोनों के दोनों। ठीक है, और सुसर का जो रुतबा है वो बाप के जैसा होता है। ठीक है ना, जिस तरह बाप से लड़की का पर्दा नहीं होता, माँ से लड़के का पर्दा नहीं होता, उसी तरह से सुसर और सास से भी जो है वो पर्दा नहीं होता। ठीक है, तो इतना करीबी रिश्ता होता है सुसर और सास का, बाप के बराबर में होता है ये। तो ये दोनों जो सहाबा थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सुसर थे नबी अलैहिस्सलाम के। और फिर दूसरे जो दो खलीफा थे ये दोनों के दोनों क्या थे, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद थे। नबी अलैहिस्सलाम का सगा बेटा जो थे भी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला ने उनको मसलहत की वजह से, हिकमत की वजह से उठा लिया कि भाई कोई बेटा मेरे नबी का नहीं रहेगा दुनिया के अंदर। और बेटी जो है औरत को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी ही नहीं। ठीक है, खिलाफत की जिम्मेदारी नहीं दी, और अल्लाह ताला ने, अच्छा जो खलीफा होता है किसका खलीफा, नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा। ठीक है, तो नबुवत, अच्छा खलीफा क्या क्या करता है, खलीफा का काम क्या होता है कि आप जिसके खलीफा हैं तो अब आपने क्या करना है, खलीफा
नहीं
का मतलब क्या होगा। खलीफा का मतलब ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, असल जो ऊपर होता है ना उसको असल कहते हैं, और खलीफा उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब असल मौजूद नहीं होती, ठीक है, या असल शख्स है वो मौजूद नहीं होगा, तो खलीफा जो है वो सारे काम करेगा। जो असल करता अगर वो होता तो वो कहीं वो ये काम कर रहा होता। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के क्या क्या काम थे भाई, कुरान की जुबान से अगर हम बताएं नबी अलैहिस्सलाम के क्या क्या काम थे। जी साहब,
काम
काम काम जॉब रोल्स, वो पास को तो बैठी होनी चाहिए। अच्छा हाँ, हमजा आप बताएं, चलें कुरान मजीद की कोई आयत ही पढ़ते हैं हाफिज साहब जी। हाँ पढ़े ना, इन्होंने आयत नहीं पढ़ी, इन्होंने खाली एक दो चीजें बताई। नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यतलू इन्होंने कहा चलो जल्दी मैं यतलू लिख दूं। सही है, सही
अच्छा
है। सो इन्होंने हिंट दे दिया बच्चियों में से किसी ने, यतलू अलैहिम आयाती व युजक्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ठीक है, ये जॉब रोल्स किसके, ये जॉब रोल्स जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के जॉब रोल्स। ठीक है ना, के दावत और तबलीग का काम। यतलू अलैहि आयाती का मतलब ये नहीं है कि हाफिज क्या नाम है उनका जिनका इंतकाल हो गया मिस्र के बड़े कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, बैठे तिलावत कर रहे हैं तो नबी का काम है बैठे तिलावत करते रहे, तरीके अच्छी अच्छी आवाज बना करके तिलावत करते रहे। ठीक है, नहीं तिलावत का मतलब क्या है, मशाइख ने लिखा यतलू अलैहिम आयाती ही का मतलब है दावत और तबलीग का काम करना। ठीक है ना, अल्लाह की आयात जो है वो लोगों को सुनाना। ठीक है, जैसे नाजिल हुई है वैसे ही सुनाना, ये तिलावत का मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे ऊपर से मिला है वैसे आगे बयान करना,
काफी
कॉपी कर देना आगे। ठीक है, तो यतलू अलैहिम आयाती ही ये नबी का काम है। ये दावत और तबलीग का मतलब है, क्योंकि उन लोगों को अरबी जुबान आती थी, हमारी तरह तो नहीं कि तिलावत सुन रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अरबी जुबान सीखना इसी वजह से हर मुसलमान के लिए ना बहुत जरूरी है। जी बलागुल मुबीन, वो फिर आगे आएगा। ठीक है, तो अभी तो है बलाग, तिलावत कर लो। ठीक है, और यही अरबों के लिए ये भी दावत और तबलीग ही बन जाती है, क्योंकि उनको अरबी जुबान समझ में आ रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद वह युजक की है, यानी तजकिया करना, इस्लाह करना, मुसलेह का काम करना, गलतियों के ऊपर रोक टोक करना। ठीक है ना, और ये रोक टोक करना जो है ये सीधी उंगलियों से, कहते हैं सीधी उंगलियों से घी निकल जाए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर क्या करना होता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस्लाह जब सीधी उंगलियों से नहीं हो रही हो तो फिर टेढ़ी उंगली, जब हुक्म आता है कि जी अब मारपीट वगैरह करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना, रोकना पड़ जाएगा इन लोगों को, ये बाज नहीं आ रहे। ठीक है, और आपके पास जो है वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे कि आप उनको रोक सकते हैं फिजिकली, तो फिर जिहाद और कताल वाली बात आती है। ठीक है, तो ये तज़किया की इंतहाई शक्ल, तज़किया की अल्टीमेट फॉर्म क्या है, जिहाद। ठीक है, किसका काम है, ये नबी का काम है। सही है, और फिर वही अल्लमुहुमुल किताब, किताब के उलूम, ठीक है ना, बाकायदा जो है वो दर्स और तदरीस का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है, मदरसा सिस्टम जिसको कहते हैं, ये किसका काम है, नबी का काम। ठीक है, यानी फिर अब बलाग, आपने कहा ना बलागुल मुबीन, तो अब उसको खोल खोल के समझाना, बयान करना, ठीक है, उसके उलूम जो है बताना, ठीक है, ये भी बलागुल मुबीन का हिस्सा बन गया एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से। और फिर हिकमत, हिकमत का मतलब क्या होता
ऐसा
है, हिकमत बयान करना,
क्यों
फलसफे झाड़ना, वो युअल्लिमुहुमुल हिकमा, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ठीक है, तो हिकमत को भी तो फिर आप तालीम दे रहे हैं ना, हिकमत की, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें करना है किसी को समझ में ही ना आए, फलसफा झाड़ना जिसको कहते हैं। ठीक है, और वो मान ले कि हाँ यार लगता है ये कुछ बहुत ही बड़े हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रही इनकी बातें, इसका मतलब ये है कि बहुत ऊंचे दर्जे में फायदे नहीं है, नहीं इसका ये मतलब नहीं है। जी
हाँ
इस्तेहाद नहीं, हिकमत का मतलब ये होता है कि ऐसे काम करना कि जिससे के सबसे ज्यादा फायदा हासिल हो सके। ठीक है ना, किसी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं और आप वो काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से वो रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कि बेहतरीन रिजल्ट हासिल करना, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे और आप एग्जाम के अंदर जो है ना वो आपको कहें कि भाई आप ये एक्सप्लेन करें बात को, तो आप जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि टीचर कह, अच्छा भाई ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा, ठीक कह रहा है, तो मैं इसको क्रॉस तो नहीं कर सकता इसके आंसर को, तो मैं इसको 1 मार्क दे देता हूँ, 2 मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो ऐसे जबरदस्त तरीके से मसले को एक्सप्लेन करता है और इतने अच्छे से जो है जवाब देता है, टीचर कहता है इसको तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। ठीक है ना, क्रॉस उसको भी नहीं किया, गलत उसको भी नहीं कहा, इसको भी गलत नहीं कहा, लेकिन उसको सिर्फ 2-3 मार्क्स दे दिए, इसको जो है वो 10 में से 10 मार्क्स दे दिए, यानी मैक्सिमम रिजल्ट मिला इसको, बेहतरीन रिजल्ट मिला इसको। ठीक है ना, तो इसको हिकमत कहेंगे, मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो हिकमत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सुन्नतें हैं ना, ये सारी की सारी हिकमत है, ये सारी की सारी हिकमत। ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के इत्तबा करो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी मैक्सिमाइज, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो सुन्नतें सिखाई है ना, ठीक है, या काम करने के तरीके बताए हैं, सिखलाए हैं करके, ठीक है, जो सुन्नतें कहलाती हैं, ये हिकमत है, ये किसका जॉब रोल है, ये नबी अलैहिस्सलाम का जॉब रोल है। ठीक है, तो अब नबी का जो खलीफा होगा, ठीक है, जो नबी का नायब होगा, नबी का जो खलीफा होगा, उसने फिर अब ये सारे काम करने होंगे, उसने यतलु अलैहिम आयाती ही का भी बेड़ा उसी ने उठाना है, उसी ने जो है वो उलूम सिखाने का बेड़ा भी उठाना है, उसी ने जो है वो तज़किया करने का भी बेड़ा उठाना है जो कि जिहाद तक पहुंचता है, और उसी ने जो है वो हिकमतों की के सिखाने का, उनको लोगों के अंदर जो है ना वो राइज करने का बेड़ा उसी ने उठाना है। बाकी लोग क्या करेंगे? पराठे खाएंगे। बाकी लोग जो अंडे पराठे खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, क्या करेंगे? बाकी लोग बात मानेंगे, काम सारा का सारा खलीफा साहब करेंगे। कहेंगे जी आप बस मुझे बताएंगे तो मैं वो काम कर लूंगा, वरना मैंने कुछ और नहीं करना। ठीक है,
और फिर उनके अंदर रह के मदद
उनकी
करेंगे।
मदद करेंगे। ठीक है ना, बाकी लोग क्या करेंगे? वो उनकी मदद करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, उनके काम में रोड़े नहीं अटकाएंगे। ठीक है ना, खामखा की जो है वो एक उल्टी सीधी हरकत ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो बाकी लोग ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फारिग हैं और बैठ के पराठे खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और फुटबॉल देख रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी काम करना है लेकिन मदद करना है। ठीक है, लेकिन असलन जो है ये खलीफा साहब का काम। ठीक है, असलन ये खलीफा साहब का काम है। ठीक है, तो हाँ, बात क्या हो रही थी कि बेटी को जो है वो खिलाफत नहीं दी जाती। सही है, यानी औरत को खिलाफत नहीं जाती, बेटी तो औरत ही होती है, औरत को खिलाफत नहीं दी जाती। ये अल्लाह ताला का निजाम है। कोई एक नबी है आंटी, नबिया कोई एक है, ठीक है ना, कोई एक जो है वो मशायख के, अच्छा खलीफा जो है आखिर में तो ताए तानीस लगा हुआ है उसके अंदर। तो ताए तानीस तो मुअन्नस की अलामत होती है, लेकिन खलीफा साहब का भी कोई आंटी होते हैं। ठीक है ना, आप बरेलियों में जरूर होते होंगे। वो है भी एक पीर, पीरनियां बड़ी मिल जाएंगी वैसे आजकल आपको। ठीक है ना, सेल्फ अपॉइंटेड पीरनियां। ठीक है, लेकिन पीरनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दीन के अंदर। ठीक है ना, इट्स नॉट इवन अलाउड। हत्ता कि मशाए को अगर कोई बहुत अच्छा दीन के अंदर बड़ी संजीदा कोई खातून नजर भी आती है ना, तो कहते हैं अगर मुझे इजाजत होती किसी औरत को खलीफा बनाने की तो मैं इनको खलीफा बना देता। बस उसके आगे कुछ नहीं करते, खलीफा बनाते नहीं है किसी को। कहते हैं अगर इजाजत होती खलीफा बनाने की तब मैं इनको खलीफा बनाता, वरना इजाजत ही नहीं है तो खलीफा बना ही नहीं सकता। यानी जो बहुत अच्छा काम करती है ना, उनको भी खाली इतनी हद तक कहा जाता है कि अगर इजाजत होती तो उनको हम दे देते शायद, वरना देते दे नहीं सकते इनको। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला ने जॉब रोल्स डिफरेंट बनाए, मर्दों के लिए अलग जॉब रोल्स बनाए, औरतों के लिए अलग जॉब रोल्स बनाए। ठीक है ना, और उसी मुताबिक, अच्छा अल्लाह ताला ने बनाए, क्या मौलवी फजलुर रहमान साहब ने बनाए हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने बनाए हैं जॉब रोल्स, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बनाया है, या हजरत जीतान? नहीं, हजरत जीतान का तुम ये काम नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते हजरत जीतान का तुमने काम जॉब रोल असाइन करने का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जॉब रोल असाइन करने का क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो जो काम करते हैं वो किसी करते पर से चलाओ अपनी
ठीक है, लेकिन कर क्यों नहीं सकते अगर वो चाहे भी नहीं कर सकते?
तरफ
दीन उनका नहीं है, और
वो
बस
खुद ही
दीन
बोलते हैं और
और यकीन वाली बात करें। जी, उनको दिलों के मामला नहीं पता। सब बातें ठीक है वैसे, आप सबकी बातें ठीक है, लेकिन उनका दीन नहीं है, उनको दिलों के मामला नहीं पता, और किसने क्या कहा, और असल रीजन बनाए बताएं, असल जो बिल्कुल सबसे अहम और बिल्कुल बुनियादी रीजन
ये काम आपसे नहीं
है। आप सचन को करने का काम है, बल्कि मैं तो कहने वाला था आप सचन भी नहीं काम कर सकते। अब बताएं कैसे,
कर
क्यों क्यों
सकते
अल्लाह का काम है, इसकी वजह
काम
बनाया किसने है? मर्द को बनाया किसने? हजरत ने बनाया, मुफ्ती साहब ने बनाया, शेख साहब ने बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, किसने बनाया? खालिक कौन है, मैन्युफैक्चरर बल्कि क्रिएटर कौन है? वो तो अल्लाह है ना, तो जिसने क्रिएट किया है वो बताएगा कि इसने क्या काम करना है, उसने क्या काम नहीं करना है, या वो बताएगा जो कि अपनी अकल से सोच रहा है और अपनी अकल से अपने मुशाहिद आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, अपनी कुछ नॉलेज गैदर कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस गैदर कर रहा है, वो बताएगा इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, जबकि क्रिएटर जो है वो बैठा तमाशा देख रहा है, उसने नहीं बताना कि मैंने जो क्रिएशन बताई बनाई है तो उस क्रिएशन ने क्या काम करना है। ठीक है, हजरत अल्लाह ताला उनकी मखफिरत फरमाए, जुनेद जमशेद भाई, ठीक है, उनके एक बयान सुना था बड़ा प्यारा, उन्होंने बड़ी सीधी सी मिसाल दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा ये ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की मिसाल भी अच्छी हर जगह मौजूद होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये आपको दे दो, दीवार के ऊपर जो है ना वो कोई कील ठोकनी है। ठीक है, तो कील ठोकने के लिए आप जो है ना कहें यार ये ट्यूबलाइट बड़ी अच्छी लग रही है, इसको उतारो, और आप ट्यूबलाइट से जब वो कील ठोकना शुरू करते हैं तो क्या होगा? आप खामोश बैठे, टूट जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर आप कहेंगे अच्छा ट्यूबलाइट तो टूट गई, तो ऐसा करते हैं ना कि मैं जो हूं ना वो एक हैमर लेकर के आता हूँ, वो हैमर ट्यूबलाइट की जगह पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो हथौड़ा ला करके ट्यूबलाइट की जगह पे लगा दिया, कनेक्शन कर दिया हथौड़े के साथ। सही है, तो क्या होगा? लाइट मिल जाएगी आपको, हथौड़े से लाइट मिल जाएगी? नहीं, हथौड़े से ना आपको लाइट मिलेगी ना आप ट्यूबलाइट से जाएगा कील ठोक सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा? ट्यूबलाइट टूट जाएगी अगर आप उसे कील ठोकने की कोशिश करेंगे, और हथौड़ा अगर आप तार के साथ लटकाने की कोशिश करेंगे तो तार भी टूट जाएगा। हथौड़ा तो चले नहीं टूटेगा, लेकिन तार भी टूट जाएगा और आपको लाइट भी नहीं मिलेगी। भाई हथौड़ा बनाया गया था कील ठोकने के लिए, और ट्यूबलाइट बनाई गई थी लाइट देने के लिए। आपने उसकी जॉब को रिवर्स करने की कोशिश कर दी, आपने इसके जॉब से उसको उसकी जॉब लेने की कोशिश कर दी, उसकी जॉब उससे जो है वो इसकी जॉब लेने की कोशिश कर दी, तो ना तो काम होगा बल्कि उल्टा नुकसान हो जाए। यही सारा का सारा मसला है। अल्लाह ने बनाया था मर्द को जिस काम के लिए, मर्द ने कहा नहीं मैं तो वो वाला काम करूंगा जिसके लिए औरत को बनाया था, औरत को बनाया था जिस काम की, औरत ने कहा नहीं मैं तो वो वाला काम करूंगी जो कि मर्द ने करना था, उसने अपना काम छोड़ दिया, इसने अपना काम छोड़ दिया। ठीक है ना, तो अब उसके बाद क्या होगा? तमाशा तो वो तमाशा जो है वो हम देख रहे हैं। कोई किसी को इल्जाम देता है, कोई किसी को इल्जाम देता है, लोग फेमिनिज्म को इल्जाम देते हैं, लोग जो है वो औरत मार्च वालों को इल्जाम देते हैं, लोग फलाने को इल्जाम देते हैं। ठीक है ना, इल्जाम औरों को देते थे, कसूर अपना निकल आया। हमारे अजीब तो यही पढ़ते हैं इल्जाम औरों को देते थे, कसूर अपना निकल आया। भाई आपने अल्लाह के निजाम को बदलने की क्यों कोशिश करी? ठीक है, वो खालिक है भाई, यही तो यकीन है, यही तो यकीन है जो कि ईमान वाले की खासियत होती है, डेफिनेशन होती है ईमान वाले की। हम मौलवी बन बन करके जो है ना, यानी दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, ये पहन लिया, वो पहन लिया, हम समझते हैं बस काम पूरा हो गया। यकीन कोई नहीं, उसके ऊपर डाउट करते हैं, नहीं, उसके बगैर भी जो है ना वो काम अच्छा हो जाएगा, अल्लाह के निजाम के बगैर भी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो खिलाफत जो है वो बेटे होते तो उनको मिलती, बेटे तो थे ही नहीं, और बेटी को खिलाफत मिल नहीं सकती, तो फिर किसकी बारी आती है? दामाद की बारी आती है। ठीक है, तो दामाद में से भी फिर कौन से वाले दामाद को पहले और कौन से को दूसरे? उधर तो बाकायदा उम्र की भी तफरीक थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उम्र में भी बहुत ज्यादा थे, और नस्बत में भी इत्तेहादी नस्बत वाले थे, तो उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनके बाद ही आते हैं हर चीज के अंदर ही। यहाँ पर क्या फर्क था कि शादी पहले हुई थी नहीं, इसमें उलमा ने जो दो
बोल
बेटियां नबी अलैहिस्सलाम ने दो बेटियां उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम भी तो होती है ना, कि इनकी एक बीवी का इंतकाल हुआ, फिर दूसरी बीवी से जो है इनका निकाह हुआ, तो ये सब कत ले गए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर। एक दिस इज नॉट द ओनली थिंग, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को सबकत हासिल है अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, लेकिन ये एक बड़ी सादा सी आसान सी एक दलील है। ठीक है, तो दो बेटियों वाले जो है वो पहले बन गए, और एक बेटी वाले जो है वो बाद में बन गए। अच्छा, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के क़याम के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बल्कि अम्बिया वाली क्लास में भी उसका आप जिक्र सुन चुके हैं। जो एक मेजर चीज फिर अब शुरू करनी थी, जिसके लिए अब हमारे पास 5-7 मिनट हैं, थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं और फिर बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत बड़ा कारनाम, बल्कि अगर एक एतबार से देखा जाए तो शायद सबसे बड़ा कारनामा अपनी खिलाफत का रूहानी कारनामा। ठीक है, वो क्या था? कुरान मजीद को कंपाइल करना और फिर उसको नशर करना, उसको स्प्रेड करना। ठीक है, ये हम हजरत अबू बकर सिद्दीक के क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जंगे यमामा के अंदर बहुत सारे हुफ्फाज़े कराम जो हैं वो शहीद हो गए, तो उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के पास आए कि अगर इसी तरीके से सहाबा जो हुफ्फाज़े कुरान हैं वो शहीद होते रहे तो एक दिन फिर हमारे पास हुफ्फाज़ खत्म हो जाएंगे, तो फिर कुरान जो है वो तो फिर कैसे महफूज रखेंगे? तो उमर अबू बकर सिद्दीक ने क्या, मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। लेकिन उमर अदान भी थे परसिस्टेंट ना, तो उनको भी अपने शरह सदर हासिल था इस बात के ऊपर कि बिल्कुल सही वाली बात है कह रहा हूँ। वो भी कहते रहे कहते रहे कहते रहे, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि फरमाया कि मैं बिल्कुल कन्विंस हो गया कि हाँ वाकई ये बिल्कुल सही काम है, ये करने का काम है। फिर जैद अज़ान को दोनों ने बुलाया कि जैद आपके ऊपर हमें एतमाद है, आप हैं भी कातिबे वही सहाबा में से, ठीक है, तो अब आप जो है ना वो कंपाइल करना शुरू करें। अच्छा मजे की बात क्या, जैद अज़ान ने भी इनकार कर दिया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आप कैसे वाला काम करने को मुझे कह रहे हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं करवाया। तो उनके भी फिर ये दोनों भी ना फिर ये भी थे परसिस्टेंट, तो ये भी जैद अज़ान को समझाते रहता कि जैद अज़ान भी बिल्कुल कन्विंस हो गया, उनको भी शरह सदर नसीब हो गया। और फिर उसके बाद जो है बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल किताब क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी अंकल वाली क्लास में, कि बाकायदा प्रोजेक्ट जो है ना उसको लॉन्च किया गया और फिर उसकी प्रोजेक्ट टीम बनाई गई, उसकी मेथोडोलॉजीज बनाई गई और बेहतरीन तरीके से जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके कुरान मजीद जो है वो एक जगह पे कंपाइल कर लिया गया। लेकिन वो जो एक कॉपी बनाई गई ना कुरान मजीद की, वो कैसी किस शक्ल में थी, किसी को पता है वो जो कॉपी बनाई गई किस शक्ल में थी?
अच्छा
हाँ ठीक है, वो अलग अलग पारों की शक्ल में थी, ठीक है, यानी हर सूरत जो है वो एक अलग कंपाइल्ड कॉपी थी, ठीक है। तो वो नुस्खा, वो एक नुस्खा, एक जर्नल, इस तरह की एक किताब नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी इस तरह पारे, बेहतरीन मिसाल थी पारों की, इन्होंने तो अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा अब ये जो पारों की तरतीब थी, तो इस तरतीब से एक तो ये था कि सूरतों की तरतीब खुद तो नहीं पता चलती ना जब तक कि आप नंबरिंग ना करें, तो नंबरिंग कोई नहीं थी उसके ऊपर लिखी हुई। अच्छा याद सबको था, जितने हुफाज सहाबा थे उन सबको कुरान मजीद जो है वो पूरी तरतीब के अंदर याद था, ठीक है। ये बात नहीं है कि जी क्योंकि अब तो वो तरतीब थी नहीं उस मसहफ के अंदर उस कॉपी के अंदर, तो अब जो है वो तरतीब कहाँ से आ गई, वो भाई सबको याद था किस तरतीब में कुरान मजीद नाजिल हो, मतलब किस तरतीब में कुरान मजीद जो है वो कंपाइल हुआ है, तो वो सबको याद थी। तो अब मुख्तलिफ मसाहिफ में था, और दूसरी बात क्या थी, यानी दूसरी लिमिटेशन क्या थी इस काम के अंदर, ठीक है, वो लिमिटेशन ये थी कि ये बस एक ही मसहफ पारों की शक्ल में, मल्टीपल कॉपीज नहीं थी इसकी, ये एक ही पारे थे, पारों की एक ही वो कलेक्शन थी जो कि मदीना तैयबा के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ान के पास महफूज कर दी गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ान का जब इंतकाल हो गया तो ये उनके खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ान के पास आ गई, ठीक है। क्या
टोटल
टोटल कितने थे, कितने पारे थे, ये एग्जैक्टली देखा लिखा हुआ नहीं देखा, ठीक है। तो इस वजह से अंकल्स के इसमें भी ये बात आई थी, किसी को पता है तो बता दे कि
कितने
नहीं, अभी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ान के पास था, फिर उमर फारूक रज़ान के पास था, उनके शहादत के बाद हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, उनकी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ये रखाया गया था, ठीक है। तो अब ये कितने पारे एग्जैक्टली थे, आज वाले पारे 30 पारों का तो हिसाब बहुत बाद में आया उसके, ठीक है। तो हर सूरत अलग पारे में का मतलब सूरह यानी कौसर वो भी एक अलग पारे की शक्ल में थी, या सूरह नास भी अलग पारे की शक्ल में थी, अल्लाह आलम हमें नहीं पता। हो सकता है छोटी छोटी सूरतों को जरा एक पारे में कर दिया गया हो, बड़ी बड़ी सूरतों को जो है वो एक पारे में कर दिया गया हो, इस शक्ल का भी हमें हमने कम से कम कहीं पढ़ा नहीं। दस द ओरिजिनल कुरान मजीद स्टिल इन मदीना मुनव्वरा, ओरिजिनल कुरान मजीद, वो उसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब जो ओरिजिनल कुरान मजीद यानी जो उस्मान रतान अब कर रहे हैं ना, वो मौजूद है, वो मदीना मुनव्वरा में नहीं है, वो कौन से उज्बेकिस्तान में, टर्की में, तुर्की में, टर्की के अजायब खाने के अंदर है। अच्छा तो दूसरी लिमिटेशन इसके अंदर क्या थी, एक तो लिमिटेशन थी कि इस मसहफ को देख करके सूरतों की तरतीब का पता नहीं चलता था, और दूसरी लिमिटेशन थी कि ये बस एक ही था, ठीक है ना। अब आपको पता है कि उमर फारूक अदानी की जमीन के जमाने में बहुत सारी फतुहात हुई, और मिस्र से लेकर के जो है वो इराक तक फतुहात हो गई, शाम भी जो है वो अच्छा खासा फतह हो गया, बैतुल मुकद्दस भी है। और उस्मान गनी अदान का जब जमाना आया तो शुरू के जो 6 साल थे, 12 साल उन्होंने खिलाफत करी है, शुरू के जो 6 साल थे उसमें तो और एक्सपेंशन होते होते उधर जो है वो दरियाए सिंध तक पहुंच गए, इधर जो बल्कि काबुल वगैरह तक पहुंच गए, इधर ऊपर जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रूस का जो इलाका था वो भी काफी सारा फतह हो गया, और वेस्ट के ऊपर। तो इतनी बड़ी सल्तनत जो कि उससे पहले तारीख में कभी नहीं बनी थी, इतनी बड़ी एक किंगडम, ये रोमन एम्पायर, ये बहुत लंबे अरसे तक रही है, पर्शियन एम्पायर बहुत लंबे अरसे तक रही है, लेकिन इनका जो एरिया था ना ये इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, ये मुसलमान किंगडम जो थी इसका एरिया बहुत बड़ा था, इसके 7 सूबे थे, बड़े बड़े मेजर प्रोविंसेस। ठीक है, कौन कौन से प्रोविंसेस, एक तो मक्का मुकरमा एक प्रोविंस बना दिया गया था, यानी प्रोविंस का मतलब क्या होता है कि जिसका के एक गवर्नर हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो उसके तहत जितना एरिया आएगा ना उसको प्रोविंस कह देते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, सरहद वगैरह जो है, वो हमारे जमाने का सरहद था, वो केपी के बन गया। तो मक्का मुकरमा एक गवर्निंग एरिया था, गवर्न एरिया था, दूसरा जो है वो मदीना तैयबा दूसरा प्रोविंस था, और उनके लिखा लिखा हुआ था शाम, ये एक हो गया, यमन एक हो गया, बसरा एक हो गया, और कूफा एक हो गया। यानी इराक उस वक्त पूरा ऐसा इराक एक प्रोविंस नहीं था, बल्कि बसरा एक प्रोविंस कहलाता था और कूफा एक प्रोविंस कहलाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद वो शाम शाम का प्रोविंस हो गया। ठीक है, और फिर आखिरी कौन सा रह गया, ये हो गए मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा, यमन, शाम, बसरा, कूफा, लास्ट वन अफ्रीका, अफ्रीका मिस्र। ठीक है ना, मिस्र एक प्रोविंस हो गया, सही है। तो ये 7 प्रोविंसेस थे। तो अब ये 7 प्रोविंसेस के अंदर लोग जा रहे हैं, नए लोग मुसलमान हो रहे हैं, अजमी लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो अब लोग जो है ना वो जो दीन में आ रहे थे वो कुरान मजीद पढ़ना सीखना फर्ज है, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत नमाज में करनी होती है, नमाज फर्ज है। कम से कम इतना कुरान मजीद सीखना कि आपकी नमाज हो जाए तो उतना फर्ज है, लेकिन जाहिर है मुसलमानों का शौक पूरा कुरान मजीद सीखने का। तो अब जो सहाबी जिसके हाथ लग रहा था आप मुझे कुरान मजीद पढ़ा दें, आप मुझे कुरान मजीद पढ़ा दें, तो वो सहाबी से कुरान मजीद पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें तफसील क्या थी जो कि शायद हमारी क्लासेस में इतना डिस्कस नहीं हुई है, कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की फरमाइश के ऊपर, एक फरमाइश नबी अलैहिस्सलाम ने भी करी अल्लाह ताला से, ठीक है, कि मेरे लोगों के लिए मुश्किल है, एक ही किरत के ऊपर सब तिलावत नहीं कर सकते, तो आप इसको बढ़ा दीजिए, तो अल्लाह ताला ने 2 की इजाजत दे दी है ना, दो भी बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने फिर दोबारा तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज करके, अच्छा 7 हरूफ के ऊपर कुरान मजीद जो है ना वो पढ़ने की इजाजत है, 7 हरूफ में से जिस भी हर्फ के ऊपर तिलावत कर ली जाएगी वो काबिल कबूल होगी। ठीक है, अब ये हुरूफ क्या होते हैं इसके ऊपर उलमा ने, इमाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इतना रिसर्च करी, इतना रिसर्च करी, इतना मुश्किल है, यानी ये फरमाते हैं इतने बड़े शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहुम, ठीक है, इतने उलूम वाले कहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेट, मेरे लिए समझना था मुश्किल मसला था कि ये हुरूफ और किरात के अंदर फर्क क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने समझाया भी बड़े अच्छे तरीके से हमें, ठीक है, कि ये लहजे थे, ये मुख्तलिफ इसमें अल्फाज का भी डिफरेंस था, और जो है वो लहजों का, डायलेक्ट्स का भी डिफरेंस था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी 7 हरूफ के ऊपर कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, जिसमें से भी कोई पढ़ ले। ठीक है, अच्छा एक बात बस आखिरी करके खत्म करते हैं, वो ये है कि ये जो डिफरेंसेस है ना इन इन किरातों के अंदर, ठीक है, ये डिफरेंसेस डायलेक्ट का डिफरेंस भी है, यानी लहजे का, जैसे हमारे यहाँ तो पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जिसके अगर आप जो है वो नॉर्थ साइड की पंजाबी सुने तो काफ़ी डिफरेंट होती है, लाहौर की पंजाबी का डायलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो है वो नीचे आ जाए सियालकोट और फैसलाबाद, उनकी पंजाबी काफ़ी डिफरेंट होती है। तो ये एक तरह के लहजे के डिफरेंट है, उर्दू में भी इसी तरह से होता है, लेकिन सिर्फ लहजों का डिफरेंस नहीं है बल्कि अल्फाज का भी डिफरेंस है इनके दरमियान। तो अब ना हमें तो ये कहा गया है, हमने हमेशा यही पढ़ा और सुना है कि कुरान मजीद में तो कोई एक एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है, दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ जो कुरान मजीद, ऑस्ट्रेलिया के कोने में होगा वही कुरान मजीद, कनाडा के कोने में भी होगा वही कुरान मजीद, रूस में भी मिलेगा वही तुम्हें जो है वो ब्राजील में भी मिलेगा। तो अब आप कह रहे हैं कि जी तो वर्ड्स का भी डिफरेंट डिफरेंस है, तो ये क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब आप बताएं।
नहीं
नहीं, ठीक है। यानी ये जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कि भाई कुरान मजीद ऐसा अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया है कि इसमें एक हर्फ का भी कोई फर्क नहीं कर सकता, एक ही हर्फ हर जगह मिलेगा आप। ठीक है, तो फिर ये तो आप कह रहे हैं कि जी तो नहीं, तो ये तो मेरे बड़े डिफरेंसेस हैं कुरान मजीद के आपस के, इन सब के अंदर अल्फाज का भी डिफरेंस है।
इंग्लिश में देख रहे हैं फिर
डायलेक्ट नहीं,
आप
एग्जैक्टली। ठीक है, कुरान मजीद के अल्फाज की हिफाजत का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जैसे इस कुरान मजीद को नाजिल किया था वो वैसे ही आज तक महफूज है। तो अल्लाह ताला ने एक हर्फ के ऊपर नाजिल नहीं किया था, एक किरात के ऊपर नाजिल नहीं किया, अल्लाह ताला ने 7 किरातों के ऊपर नाजिल किया, और वो सातों की सातों किरातें जो है वो महफूज है। ठीक है, सातों की सातों किरातें महफूज है। ठीक है जी, नहीं 7 हरूफ या हम अब ये तरफ मुश्किल मसला तो है ना, जब मुझे तरजीह मानी साहब कह रहे हैं मुश्किल है तो फिर तो जाहिर है मुश्किल तो है ये, तो इस वजह से इसकी तफसील इंशाल्लाह थोड़ी बहुत हम अगली क्लासेस के अंदर आपको समझाएंगे। लेकिन मकसद समझाने का सबसे सिर्फ ये है कि जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही 1400 साल गुजरने के बावजूद ये कुरान महफूज है, लेकिन नाजिल होते हुए डिफरेंसेस थे, इनसे मानी का डिफरेंस नहीं बनता, अहकाम का कोई डिफरेंस नहीं बनता, अल्फाज का जो मुख्तलिफ थोड़ा सा डिफरेंस बनता है, मानी और अहकामात में कोई डिफरेंस नहीं है इन 7 हरूफ के दरमियान। ठीक है, तो बस ये कुरान की हिफाजत की एक तफसीली बहस है, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बाकी ईमानदार इसमें से पढ़ेंगे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम।
हाँ।